ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत् सर्वस्वपदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्वीर्यैर्मा पुरो विभो निर्माय शेते यदमोऽसु पुरुष भुङ्क्ते गुणं षोडश षोडशात्मक सोलं कृषिष्ठ भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंध चार अध्याय सत्रह श्लोक 32। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नूनं बत ईशस्य समीहितं जनहि तत्मायया दुर्जयया अकृत आत्मभिः न लक्ष्यते यः तु अकरोत् अकारयत् यः अनेकः एकः परतः च ईश्वरः। नूनं बते सस्य समीहितं जनहि नूनं बते सस्य समीहितं जनहि तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय योनेक एकः परतस्य ईश्वरः नूनं बते सस्य समीहितं जनहे नूनं बते सस्य समीहितं जनहे तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय योनेक एकः परतश्च ईश्वरः नूनं बते सस्य समीहितं जनहे तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय योनेक एकः परतस्य ईश्वरः नूनं बते सस्य समीहितं जनहे तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय योनेक एकः परतस्य ईश्वरः तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय योनेक एकः परतस्य ईश्वरः नूनं बते सस्य समीहितं जनहि तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय योनेक एकः परतस्य ईश्वरः नूनं बते सस्य समीहितं जनहि तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय योनेक एकः परतश्च ईश्वरः यो नेकै का परतश्च ईश्वर।
माता जी
नूनं बते सहस्य समीहितं जनै तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयः यो नेक एकः परतश्च ईश्वरः। नूनं बते सहस्य समीहितं जनै तन्मायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयः यो नेक एकः परतश्च ईश्वरः।
नूनम् अवश्य ही बत निश्चय ही ईशस्य भगवान का समीहितम् कार्य योजना जन ही मनुष्यों द्वारा तत्मायया उनकी माया से दुर्जयया जो दुर्जय है अकृत आत्म भी जो अधिक अनुभवी नहीं है ना कभी नहीं लक्ष्यते देखे जाते हैं यह जो तू तब अकरोत उत्पन्न किया अकारयत उत्पन्न कराया यह जो अनेक कई एक एक परत अकल्पनीय शक्ति से क्ष तथा ईश्वर नियंता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद हे भगवान यद्यपि आप एक हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है, अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं, वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत्त हैं। तात्पर्य ईश्वर एक है, किंतु वह अनेक शक्तियों तथा भौतिक शक्ति यथा भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति तटस्था शक्ति इत्यादि में विस्तार करता है। जब तक किसी पर विशेष कृपा न हो वह नहीं समझ सकता कि इन शक्तियों के माध्यम से भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं। जीवात्माएं भी भगवान की तटस्था शक्तियां हैं। ब्रह्मा भी इस जीवात्माओं में से एक हैं, किंतु परमेश्वर ने इन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है। यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृष्टा माने जाते हैं, किंतु परम सृष्टा तो भगवान ही है। इस श्लोक का माया शब्द महत्व का है। माया का अर्थ है शक्ति। ब्रह्मा जी शक्तिमय नहीं है, वरन वे भगवान की तटस्था शक्ति के प्राकट्यों में से एक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा मात्र करता है, यद्यपि कभी कभी योजनाएं विरोधाभासी लगती हैं, किंतु समस्त कर्म के पीछे एक विशिष्ट योजना होती है। जो अनुभवी हैं और भगवान पर जिसकी कृपा है वह भगवान की परम योजना को जिसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं समझ सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम लोग है पृथ्वी देवी के द्वारा किए गए स्तुति पर विचार कर रहे हैं। एक बार स्थिति को समझिए, किस स्थिति में पृथ्वी देवी भगवान की स्तुति कर रही हैं। आप कथा जानते हैं, जब पृथु महाराज राज सिंहासन पर अभिषिक्त हुए, जनता उसके सामने आ गई छुतछाम देहा, भूख से त्रसित होकर के क्षीण शरीर वाले। भगवान इस दुर्दशा के ऊपर विचार किए, उनको पता चल गया कि पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है। वे तुरंत पृथ्वी को मारने के लिए, दंडित करने के लिए उद्यत हो गए। पृथ्वी अपने जान बचाने के लिए गाय का रूप धारण करके भागी, लेकिन वे कहीं भी भाग रही थी ऐसा अनुभव करने लगे कि पृथु महाराज तो हमारे पीछे वैसे लग गए हैं जैसे प्राणियों के पीछे काल। वह भगवान के ही शरण में गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आप पालन के लिए स्थित हैं तो हमारा भी पालन कीजिए। और भगवान के कार्यों को असंगत दिखाने का एक प्रयास की कि आप प्रजा के पालन के लिए अवस्थित हुए हैं और प्रजा पालन में सबसे जो सहायक है उसका वध कर रहे हैं। आप धर्मज्ञ हैं लेकिन मुझ स्त्री का वध करने के लिए उद्यत हैं और आपके कार्य में असंगति लग रही है। आप अपने कार्य पर विचार कीजिए कि हमको मार करके आप प्रजा को कहां धारण करेंगे। और कई एक प्रकार का तर्क दे रही है लेकिन उसके सारे तर्कों को पृथु महाराज खंडित कर दिए। वे कह रहे कि जो निरनुक्रोश, जो प्रजा के प्रति दया से युक्त नहीं है, जीवों के प्रति दया से हीन है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, किसी का भी वध कर देना राजा के लिए अवध है। और तुम यह गुमान कर रही हो, यह कह रही हो कि हमको मार करके आप प्रजा को कहां रखेंगे। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा, तिल तिल कर दूंगा और अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। और तुम यह तर्क दे रही हो कि स्त्री हो तो क्या स्त्री कोई अपराध करेगी तो राजा उसको छोड़ देगा। स्त्री का वध जरूर नहीं किया जाता है, नहीं दंडित किया जाता है, लेकिन क्या स्त्री चोरी करेगी, पाकिटमारी करेगी तो उसको छोड़ दिया जाएगा। और वो तर्क दे रहे थे, वो मानो ये तो कहीं नहीं पृथ्वी देवी, और तो मानो भगवान ऐसा सोच सकते हैं कि तुम गाय का रूप बनाई हो, हमको धोखा नहीं दे सकती हो, माया गा, मैं समझ रहा हूं कि तुम कपटी गाय हो। तो वो कई एक तर्क दी लेकिन सारे तर्कों को पृथु महाराज खंडित कर दिए। और वो पृथु महाराज के तरफ देख रही है तो मनमयी मूर्ति, वे एकदम क्रोध से आविष्ट थे, उनके उस भयंकर रूप को देख करके, काल रूप को देख करके कृतांतम इव विव्रतम। जब वे क्रोध में थे तो उनका रूप ऐसा लग रहा था मानो मूर्तिमान काल ही उपस्थित हो गया है। तो अब इसको, इस ऐसे रूप को देख करके प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात बेपथु, वो इतना भयभीत थी कि थर थर कांप रही थी। लेकिन अब भगवान को हाथ जोड़ी, उनको नतमस्तक हुई और उनसे कहने लगी। और भगवान से वो कहने लगी कि हे भगवान, हमको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आप में क्रोध कैसे आ गया। अरे क्रोध तो मायाबद्ध जीवों की वृत्ति है, ये काम क्रोध है, ये संसार का उर्मी कहा जाता है, जो मायाबद्ध जीव है उनमें लहर के समान आता है। आप तो इस देहात्म बुद्धि से परे हैं, आप तो माया मोह में नहीं हैं, आप में कैसे क्रोध आ गया और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका यह व्यवहार कैसा है। अरे एक समय ऐसा था कि हम रसातल चली गई थी तो अपने शरीर से अपने मुख पर स्थित करके हमको स्थापित किए, तो एक बार तो मैं दुर्दशा में थी तो उस समय हमको उबारे और वही आप हमको आज जान से मारना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे संसार में भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी को स्थापित करता है, किसी को जन्म देता है तो उसका वध नहीं करता है। ऐसा लोक में भी प्रसिद्ध बात है कि यदि कोई किसी वृक्ष को लगा दिया और वह वृक्ष पॉइजन का फल देने लगा, विष का वृक्ष निकल गया, फिर भी व्यक्ति अपने से नहीं काटता है, ये लोक में प्रसिद्ध बात है। ये सब बात पढ़ने पर हमें अपने घर की याद आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग सब्जी का वो लता लगाते थे, तुरई और कई एक चीज, कभी कभी लौकी या तुरई तीता निकल जाता था, तीता लौकी भी होता है, उसका सब्जी नहीं बनता है तो वो तीता निकल गया, लेकिन फिर भी माँ कहती थी कि ना अपने हाथ से नहीं काटना है, कोई दूसरा उखाड़ दे जो मजदूर हैं वो दूसरी बात है। तो हम यह कह रहे हैं कि यह सिद्धांत इतना स्थापित है कि लोक में भी प्रचलित है कि जिसको अपने से लगाए हैं उसका वध नहीं किया जाता है। और आप हमारा सृष्टि किए, हमको दुर्दशा से उबारे और वही स्वयं ही आप हमको जान से मारने के लिए उद्यत हैं, ये तो बहुत एक्वायर्ड सिचुएशन है, बहुत विषम परिस्थिति है। अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए हमको, हम किसके शरण में जाए। पृथ्वी देवी ऐसा विचार कर रही है कि कोई बच्चा है तो किसी संकट में पड़ता है तो माँ के शरण में जाता है, और किसी बच्चे को माँ ही विष पिलाने वाली हो जाए, विष दान करने वाली हो जाए, तो अब बच्चा किसके शरण में जाएगा, माँ को छोड़ करके किसके शरण में जाएगा। बहुत विषम स्थिति है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसके शरण में जाए। वे आगे कह रही है कि यह एक तदादव असृजत चराचर है कि आप आदि में इस सृष्टि के प्रारंभ में चर अचर की रचना की अपने माया शक्ति से, और तयैव स्वयं किल गुप्त मुद्यतः, और वही आप इस समय रक्षा करने के लिए उद्यत हैं, पालन में स्थित हैं, तो तयैव स्वयं किल गुप्त मुद्यतः कथम नुमम धर्म परो जिघांसति। आप प्रजापालन धर्म रूप, प्रजापालन रूप धर्म में स्थित हैं और वही आप हमको वध करना चाहते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आप धर्म पर धर्म परायण हो करके मेरा वध करने के लिए उद्यत है। तो यह शब्द बोल रही है पृथ्वी कि कथम नुमम धर्म परो जिघांसति, अरे धर्म परायण हो करके हमारा वध आप कैसे करना चाहते हैं। तो मानो भगवान कह सकते हैं कि क्या मतलब, तो हम वध करना चाहते हैं तो एक तरह से तब तुम यही कह रही हो ना कि मैं अधार्मिक हूं, कोई धर्म परायण व्यक्ति वध नहीं करेगा और मैं वध करने के लिए उद्यत हूं, तो इसका अर्थ है कि तुम आरोप लगा रही हो कि हम अधार्मिक है, यही कह रही हो ना। तब पृथ्वी देवी कह रहे हैं कि ना, हम ऐसा नहीं कह रही, हम आपको अधार्मिक नहीं कह रही है, लेकिन आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाह रहे हैं, यह हमको समझ में नहीं आ रही है। और सिद्धांत दे रही है कि नूनम बतेष्टस्य समीहितम् जनै तन्माया दुर्जया कृतात्म भी, कि ईशस्य समीहितम्, जो भगवान की योजना है, उनका क्रिया है, तो इसको जो माया मुग्ध जीव है इसको नहीं समझ सकता है। अकृतात्म भी, भगवान की क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं, यह अकृतात्मा नहीं समझ सकता। अकृतात्मा का अर्थ है जो आत्मा मतलब मन, अपने मन को भगवान में नियोजित नहीं किया है। अकृत जो नियोजित नहीं किया है, आत्मा मन को जो अपने मन को भगवान में नहीं लगाया है, भाई मन भगवान से क्यों हट गया है, मन क्यों नहीं लगा रहा है, तन माया दुर्जया, उन्हीं के माया से मोहित होकर के, और उस माया के विषय में कह रहे हैं कि दुर्जया है, इसको जीत पाना बहुत कठिन है। तो भगवान के अजेय माया से मुक्त होकर के, जो आपके कृपा से दूर है, आपके भक्ति से दूर है, तो ऐसे व्यक्ति आपके क्रियाकलाप को नहीं समझ सकते। वे क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका स्वरूप ही विलक्षण है, आप अचिंत्य हैं। जैसे आपका स्वरूप अचिंत्य है, वैसे आपका क्रिया भी अचिंत्य है। स्वरूप कैसे अचिंत्य है, तो इस बात को कह रही हैं कि योने का एक परतश्च ईश्वर, स्वरूप इस दृष्टि से अचिंत्य है कि आप एक हैं, अनेक हैं, दोनों हैं, ये दो विरोधी चीज एक साथ है, भगवान एक भी हैं और अनेक भी हैं। और इतना ही नहीं, परतश्च ईश्वर, जीव गोस्वामी तो कहते हैं कि आप एक हैं अनेक हैं, ये तो संसार की बात हुई, और इस संसार से बाहर भी वैकुंठ इत्यादि के भी ईश्वर हैं। तो ये एक और अनेक, एक ही व्यक्ति एक है और अनेक है, दोनों है, यह बात तो कम से कम मनुष्य मस्तिष्क में नहीं टिकती है। ये कैसे होगा कि एक ही व्यक्ति एक भी है और अनेक भी है, लेकिन भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। इसी से भगवान को अचिंत्य कहा गया है। भगवान कैसे अचिंत्य हैं, अब इन्हीं शब्दों में ये बातें हैं, यो अनेक एक, अनेक भी है एक भी है, भाई अनेक कैसे हैं, जगत के रूप में अनेक हैं, ईश्वर के रूप में एक हैं, या देवताओं के रूप में अनेक हैं, देवताओं के नियंता के रूप में एक हैं, या अपने शक्तियों के दृष्टि से अनेक है और शक्तिमान के दृष्टि से एक है। तो थोड़ा इस बात पर विचार कीजिए कि भगवान का जो क्रियाकलाप है वो माया मुग्ध जीवों के समझ से परे क्यों है, क्योंकि उनका स्वरूप ही कुछ ऐसा है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि जस्मिन् निदम् यतस्येदम् येनेदम् य इदम् स्वयं योस्मात् परस्माश्च या स्वयं तम प्रपद्य स्वयं भुवं। गजेंद्र जी कहते हैं कि जस्मिन इदम, ये संसार जिसमें टिका हुआ, इदम मतलब संसार, जस्मिन जिसी में संसार है, यस्मिन इदम यतश्चेदम और जहां से संसार निकला है, और जे नेदम जिनके द्वारा संसार बनाया गया है, अरे संसार बनाने की बात तो दूर है, या इदम स्वयं जो खुद ही संसार रूप है, लेकिन फिर भी अस्मात् परस्माश्च पर, लेकिन फिर भी भगवान संसार के कारण से या कार्य से दोनों से एकदम विलक्षण है, जिनका कोई कारण नहीं है, ऐसे आपकी शरणागति स्वीकार कर रहा। तो विलक्षण बात आ रही है, अचिंत्य बात आ रही है ना, कि जो संसार रूप है लेकिन फिर भी इससे एकदम पृथक है, इसके कार्य से भी अलग है, उनका कोई कारण नहीं है। तो यह भगवान का स्वरूप है, यो नेक एक परत। वह एक हैं, अनेक हैं और इससे एकदम एक अनेक से भी अलग हैं। और इनका कार्य भी विचित्र है। ये भगवान जो सृष्टि किए यह भी अपने आप में विचित्र है। ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि अरे आपके सृष्टि का ही पार पाना, इसको ही जान जाना कठिन है, फिर आपको जानने की बात तो बहुत दूर है। तो कह रहे हैं कि यह तो करोत अकारयत, कुछ सृष्टि तो भगवान स्वयं किए, सर्ग की सृष्टि खुद किए, विसर्ग की सृष्टि दूसरे से करा दिए। तो भगवान की सृष्टि भी विचित्र है। तो ऐसे भगवान के समीहितम को वे क्या करना चाहते हैं माया मुग्ध जीव नहीं समझ सकता। अरे माया मुग्ध जीव की बात तो दूर है, बड़े बड़े ऋषि लोग भी नहीं समझ पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ते हैं कि युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हुआ, भगवान ज्ञान दिए, अर्जुन का मोह दूर हो गया। और युद्ध के पहले अर्जुन का मोह हुआ और युद्ध के बाद राज्य प्राप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर को मोह हो गया। महाराज युधिष्ठिर विलाप करने लगे, कहे कि ना मैं राज्य नहीं लूंगा। अरे रक्त से रंजित पाप करके जो राज्य लिया गया है ये राज्य हम नहीं लेंगे, हम लोग तो बहुत भारी पाप किए हैं, ये पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता, हम राज्य नहीं लेंगे। भगवान उनको समझा रहे थे कि धर्म युद्ध लड़ करके राज्य लिए हो, इसमें कोई पाप नहीं हुआ है, और कदाचित तुम्हें पाप की शंका भी है तो ऋषि लोग यज्ञ कराएंगे, यज्ञ से कोई भी पाप नष्ट हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि ना, अरे एक हिंसा से नहीं, एक हिंसा दूसरे हिंसा से कैसे दूर हो सकता है, हम लोग बहुत भारी पाप किए, कितने स्त्रियों के गोद को सुना किए, कितने स्त्रियों के सिंदूर को धोए, ये बहुत भारी पाप किए, बहुत हत्या किए, तो फिर यज्ञ करने से कैसे शुद्ध हो जाएंगे, क्या कहीं कीचड़ लग गया है तो और कीचड़ से उसको साफ किया जा सकता है, क्या थोड़ा सा मदिरा कहीं गिर जाने से कोई वस्तु अपवित्र हो गया है तो क्या और मदिरा डाल करके उसको शुद्ध किया जा सकता है। अरे भूल से अज्ञान बस हम लोग हिंसा किए, अब हिंसा के पाप को फिर जानबूझ करके हिंसा करके यज्ञ में हिंसा करके कैसे दूर कर सकते हैं। तो वे विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, भगवान उनको समझा रहे थे, और भगवान ही नहीं समझा रहे थे, वहां बड़े बड़े ऋषि लोग जुटे थे, अब भगवान समझा रहे हैं तो वे लोग भी समझाने लगे। वे कह रहे हैं कि व्यासाद्यई ईश्वरे हाग्यई कृष्णे नाद्भुत कर्मणा, व्यास जी प्रमुख थे, धौम इत्यादि सब समझा रहे थे, लेकिन सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि ईश्वरा ईश्वरे हाग्य, वे भगवान के इहा को नहीं समझ रहे थे, अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि कृष्णे नाद्भुत कर्मणा, भगवान भी समझा रहे थे, ऊपर से समझा रहे थे, भीतर परमात्मा रूप से उनका शोक बढ़ा रहे थे। जब भगवान ही शोक बढ़ा रहे हैं तो समझाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऋषि लोग भगवान के इस चेष्टा को नहीं समझा रहे थे, तो एक एक से उपाख्यान कह कह करके समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब भगवान के इच्छा तो यह थी कि अर्जुन का मोह दूर न हो, इनको भीष्म देव के यहां ले जाना था, भीष्म देव को दर्शन देना था और यह समाज में स्थापित करना था कि व्यास इत्यादि से भी ज्यादा ज्ञानी भीष्म देव हैं। तो इसलिए भगवान वो मोह को दूर होने नहीं देते थे और बढ़ा रहे थे, लेकिन ऋषि लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे, तो बहुत समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो भगवान की क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हैं, समझना कठिन है। वे पांडवों का संधि दूत बन करके गए, बाहर से तो लगता था कि कौरव पांडव का संधि कराना चाहते हैं, युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जा करके ऐसा भाषण किए कि और युद्ध भड़क गया। ऋषि लोग समझा रहे थे, जब नहीं समझे तो भीष्मदेव के यहां ले गए। अब भीष्मदेव जब देखे कुंती को तो रोने लगे, पांडवों को देखे तो और वे रोने लगे और कहने लगे कि अहो कष्टम अहो न्यायम यूयम धर्म नंदना जीव तुम नारहतक क्लिष्टम विप्र धर्मा च्युताश्रय। भीष्मदेव कहने लगे कि कितनी कष्ट की बात है, कितना अन्याय हुआ है। धर्म नंदना पांडवों को कह रहे कि आप लोगों का ऐसा व्यवहार है कि धर्म भी खुश हो जाता है। किसी को कष्ट मिलता है तो उसका कारण पाप माना जाता है, अधर्म माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो धर्म करेगा वह सुखपूर्वक जिएगा। लेकिन पांडवों की क्या स्थिति है? अरे युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के पुत्र ही है। सूत गोस्वामी भीष्मदेव शब्द दे रहे हैं यद यूयम धर्म नंदना, अरे आपका ऐसा व्यवहार है कि धर्म भी प्रसन्न हो जाता है। धार्मिक है ये बात नहीं, इतना अच्छा व्यवहार है, इतना पुण्य कृत है कि धर्म को आनंदित आप लोग कर देते हैं और फिर भी आप लोग ऐसे कष्ट से जी रहे हैं। कह रहे हैं कि विप्र धर्मा च्युताश्रय, अरे कोई व्यक्ति धर्म का आश्रय ले, ब्राह्मण का आश्रय ले या भगवान का आश्रय ले, ये तीन में से किसी का आश्रय ले ले तो ये संकट से दूर हो जाता है। आप तीनों का आश्रय लिए हैं फिर भी इतने भारी कष्ट में हैं, ये विचित्र बात है। अब कह रहे हैं कुंती के तरफ कि संस्थे तिरथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधु। ये कुंती इसके पति जो अतिरथी थे, अतिरथी का अर्थ है कि जो अमित योद्धाओं के साथ अकेले लड़ सकता है, तो इसके पति की मृत्यु हो गई तो यह सती नहीं हुई, क्योंकि बाल प्रजा वधु, क्योंकि तुम लोग छोटे छोटे तो तुम लोगों के चलते ये बहुत कष्ट सही, तुम लोग के पालन के लिए जीवित रहे, नहीं तो यह सती हो गई होती। तो जुष्मत कृते बहुत बहुन क्लेशन प्राप्त तो कवती मुह, तो उस समय तो आप लोगों के पालन के लिए, तुम लोगों के पालन के लिए वह जीवित रही, लेकिन थोड़ा भगवान के लीला पर विचार करो, थोड़ा स्थिति पर विचार करो कि इसके पति की मृत्यु हो गई एक बात हुई, लेकिन वैसे कष्ट पाई जैसे एकदम अनाथनी हो। तो कवती मुह, अरे पांच पुत्र हैं वे सयाने हो गए, उसके बाद भी यह कष्ट भोगती रही और बार बार, तो इस विषय में क्या कहा जाए? यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि बृकोदर, अरे इसके पक्ष में कौन कौन लोग हैं? ये इसी का पुत्र राजा है, भीम जैसे बलवान व्यक्ति हैं, अर्जुन जैसे गंडी उधारी हैं, और कृष्ण जिसके पक्ष में है उसको भी बार बार दुख हो रहा है, तो यह सामान्य बात नहीं है, यह भगवान की इच्छा ही हो सकती है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं इसको कोई समझ नहीं सकता है। कोई कह सकता है ठीक है समझे या न समझे, समझने का प्रयास तो कर सकते हैं। तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि न यश्य करहिचिद राजन उमान वेद विधित सीतम, अरे भगवान क्या करना चाहते हैं इसको कोई भी मनुष्य नहीं समझ सकता। करहिचित पुमान, कोई भी मनुष्य नहीं समझ सकता, चाहे समझे या न समझे प्रयास तो करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यद जिज्ञासया जुक्ता मुह्यंती कवयोपि, अरे जो इसको समझने का प्रयास करेगा भले ही वह जुक्ता मतलब विवेकी हो और कवय शास्त्रों का जानकार हो, वह भी मोहित हो जाता है, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं स्थापित कर सकता, तो जानने के प्रयास करने में और मोह बढ़ जाता है। तो भगवान के क्रिया को, भगवान की इच्छा को, भगवान क्या करना चाहते हैं इसको समझना बहुत कठिन है। तो माँ पृथ्वी कह रही है कि जो माया मुग्ध जीव हैं तो वे आपके प्लान को, आपकी योजना को नहीं समझ पाते, तो हम आप पर अधर्म का दोषारोप नहीं कर रही हूँ, मैं केवल अपनी अज्ञता प्रकट कर रही हूँ कि हम तो माया से मुक्त हैं, आपकी माया दुर्जया है, आपके कृपा के बिना इसको जीता नहीं जा सकता। तो ऐसे माया मुग्ध जीव आपके इच्छा को, आपके प्लान को, आपकी योजना को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप विलक्षण विचित्र हैं। तो कहने का आशय यह है कि आपका ज्ञान, आपके क्रिया का ज्ञान तो केवल आपके कृपा से होता है। जब तक आपका कृपा नहीं होगा तब तक कोई नहीं समझ सकता। तो हम आप पर अधर्म का दोषारोप नहीं कर रही हूँ, केवल मैं यह कह रही हूँ कि हम माया मुग्ध जीव हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों विरोधी चीज आप में उभर रहा है, आप सृष्टि का पालन करना चाह रहे हैं और सृष्टि के पालन में जो सबसे बड़ा सहयोगी है उसी का जान मारना चाह रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। हम अपनी अज्ञता को केवल प्रकट कर रही हूँ, आप पर अधर्म का आरोप नहीं कर रही, हम नहीं समझ पा रही हैं, इसलिए कि मैं माया से बाधित हूँ और आपकी माया आपके कृपा के बिना पीछा नहीं छोड़ सकती। तो पृथ्वी देवी इस बात को समझ करके आगे के श्लोकों में भगवान के कृपा के लिए उनको नमस्कार करने लगी। तो पृथ्वी देवी सिद्धांत दे रही है कि भगवान में विरोधी चीज दिखता, असंगत चीज दिखता है, लेकिन माया मुग्ध जीव इस बात को नहीं समझ सकता कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भक्तों को कष्ट क्यों होता है, कष्ट से ही भक्तों का प्रेम बढ़ेगा तो क्यों नहीं कष्ट होगा, भगवान किस घटना से क्या कार्य कराना चाहते हैं भगवान ही जानते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। पांडवों पर कष्ट आया और भगवान की योजना थी उनके प्रेम को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए तो भगवान क्या करना चाहते हैं भगवान जानते हैं। विषम स्थिति में डाल करके किसी का हित करना चाहते हैं, किसी के भक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं, इसलिए भी ऐसा करते हैं। तो पृथ्वी देवी यहाँ यही कह रहे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि धर्म परायण होकर के भी मेरा वध करना चाह रहे हैं, जो सृष्टि में सबसे सहायक मैं हूँ और सृष्टि का पालन करने के लिए उसी का वध करना चाह रहे हैं, तो ये आपका क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता, आपकी कृपा होगी तभी इसको कोई समझ सकता है। तो भगवान के कृपा प्राप्ति के लिए आगे के श्लोकों में वह भगवान को नमस्कार करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की
मायापुर गए थे, मायापुर गए थे।